हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के हमारे रविवार के कार्यक्रम में। आज हम हमारे कार्यक्रम में एक बहुत ही रोचक मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। एक जीव या बद्ध जीव कैसे भगवान श्री कृष्ण से पुनः मिल सकता है या एक बद्ध जीव हम जो प्रकृति हैं हम कैसे परम पुरुष से विवाह कर सकते हैं। शादी का सीजन चल रहा है ना आजकल, तो हम सबको कैसे भगवान श्री कृष्ण से पुनः विवाह करना है, और इसलिए हमने आज का ये श्लोक लिया है श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद से, चौथा अध्याय और 20वां श्लोक है ये, मेरे पीछे दोहराइए। इसमें भगवान श्री कृष्ण को पति कहा गया है, और फिर हम सब कौन हुए, हम सब प्रकृति या हम सब हैं उन भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां, प्रकृति एवं पुरुष। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अलग अलग प्रकार से कहा गया है कि कैसे वो हम सब के पति हैं। श्री शुक उवाच श्रिय पतिर्यज्ञ पति प्रजापति धियां पतिर्लोकपति धरापति पतिर्गतिश्चांदक वृष्ण सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पति। श्रिय पतिर्यज्ञ पति प्रजापति धियां पतिर्लोकपति धरापति पतिर्गतिश्चांदक वृष्ण सात्वतां प्रतिदता मे भगवान् सतां पति। श्रिय पतिर्यज्ञ पति प्रजापति धियां पतिर्लोकपति धरापति पतिर्गतिश्चांदक वृष्ण सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को एक दो सात बार पति कहा गया है। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, जो समस्त भक्तों द्वारा पूज्य है यदुवंश के अंधक तथा वृष्णि जैसे समस्त राजाओं के रक्षक तथा उनके यश हैं, लक्ष्मी देवी के पति समस्त यज्ञों के निर्देशक अतएव समस्त जीवों के अग्रणी समस्त बुद्धि के नियंता समस्त दिव्य एवं भौतिक लोकों के स्वामी तथा पृथ्वी पर परम अवतार हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण मुझ पर कृपालु हों। तो श्लोक में भगवान को श्रीयपति, यज्ञपति, धरापति, धियामपति, अलग अलग तरीके से भगवान को पति कहा गया है। इस भौतिक संसार में भी हम लोग जो अपने असली पति को छोड़कर आए हैं, क्योंकि हम सब प्रकृति हैं और प्रकृति होने के कारण हम सब उन परम पति भगवान श्री कृष्ण की ही धरोहर हैं। तो हम लोग जो हमारे असली पति को छोड़कर आए हैं और हम लोग सब इस भौतिक संसार में पति बनना चाह रहे हैं, सोचिए यदि कोई पत्नी अपने पति को छोड़ दे और वो केवल छोड़ी ही नहीं है बल्कि वो स्वयं पति बनना चाह रही है, तो विचित्र की बात नहीं है। एक तो पति को छोड़ा और उसके पश्चात फिर पति बनना चाह रही है वो पत्नी। तो हम लोग सब अपने जो परम पति को छोड़े हैं और यहाँ पर हम पति बनने के इच्छुक हो रहे हैं। किस प्रकार के पति? कोई लखपति बनना चाह रहा है और फिर लोग प्रश्न भी पूछते हैं कि हम में से कौन बनेगा करोड़पति। हालांकि हैं रोड़पति, लेकिन हम सब करोड़पति बनना चाहते हैं। तो आज का हमारा शीर्षक है कि कैसे हम जो प्रकृति हैं पुनः परम पुरुष से मिले। और मैंने सोचा कि इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है जो इस मुद्दे को बहुत ही विस्तार से विश्लेषण कर दर्शाता है, और ये प्रसंग है रुक्मिणी कृष्ण का मिलन। कि किस प्रकार से रुक्मिणी देवी ने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति माना, एकमेव पति केवल भगवान श्री कृष्ण को माना, और रुक्मिणी देवी ने और कहीं पर अपना ध्यान भंग नहीं किया, केवल भगवान श्री कृष्ण को पाने हेतु रुक्मिणी देवी ने जो कुछ किया वो हमारे लिए एक आदर्श है कि हम कैसे यदि भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाना चाहते हैं तो रुक्मिणी देवी के पद चिन्हों पर हमें चलना है। और इसलिए हम आज जो शीर्षक लिए हैं इसके संदर्भ में रुक्मिणी का कृष्ण से मिलन। हालांकि हमने इस कथा को बहुत बार सुना भी होगा, रुक्मिणी हरण वास्तविक रूप में हुआ क्या था? रुक्मिणी हरण हुआ था, और किसने किया था? द्वारकाधीश, भगवान श्री द्वारकाधीश ने रुक्मिणी हरण किया। तो हरण जब किसी का होता है तो अर्थात हम ये समझते हैं कि वो व्यक्ति या रुक्मिणी देवी पर बंधन थे, तभी तो भगवान को हरण करना पड़ा। यदि बंधन नहीं होता तो भगवान को हरण करने की क्या आवश्यकता थी? रुक्मिणी देवी को भागने की क्या जरूरत थी? कई बार लोग भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का उदाहरण लेते हैं और इस बद्ध अवस्था में तीन गुणों के अधीन वो सोचते हैं कि हम इनके पदचिन्हों पर चल रहे हैं तो आओ चलो भाग चले। हाँ? और जब पूछा जाता है तो अरे रुक्मिणी कृष्ण देखो जब वो मिलना चाहते थे तो कोई भी उन्हें रोक नहीं पाया, इस संसार की कोई शक्ति उन्हें रोक नहीं पाई, उनके प्यार को कोई रोक नहीं पाया, तो हमारे प्यार को कौन रोकेगा। अरे फिर डरना क्या। आएंगे शिशुपाल, शिशुपाल जैसे बहुत से विलन आएंगे और पूरा वो एक एक कर वन टू वन निकालते हैं। मैं जब बता रहा था कि एक बार राधा गोपीनाथ मंदिर में हम लोग बैठकर जप कर रहे थे, दिन का समय था, कोई कार्यक्रम में विशेष नहीं था उस दिन, तो हम लोग इत्मीनान से बैठकर जप कर रहे थे। तो मैंने देखा कि एक लड़का और एक लड़की एकदम हड़बड़ाए हुए से उन्होंने प्रवेश किया मंदिर में और उनके हाथों में कुछ उनके सामान भी थे। तो जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया तुरंत, जैसे यहाँ पर अपना ऑल्टर है वैसे ऑल्टर के सामने जाकर वो खड़े हो गए, एकदम ऑल्टर के पास में। तो मैं देख रहा था कि इतने हड़बड़ाए हुए अचानक भागते हुए, इतनी तीव्रता तो मुझे भी कभी नहीं हुई मंगल आरती कि इतना अंदर अंदर ही जाने वाले थे ऑल्टर के। तो लोग वहां पर खड़े हुए और फिर मैं थोड़ा निकट ही था तो उनका थोड़ा वार्तालाप कुछ मुझे सुनाई सा दे रहा था। तो ये लोग अपने अपने घर से भाग कर आए थे और जो फिल्मों की कहानी होती है उस प्रकार की कुछ कहानी इनकी थी। तो उसमें से अब वो जो लड़का है वो लड़की को कहता है कि अभी निकालो निकालो हार निकालो। दोनों थैली में कहीं मंदिर के बाहर हार बिकते हैं तो हार लेकर आए थे, हार पहना था ना वर और वधू, उसकी भी हम चर्चा कर रहे थे। वर जैसे मैं बोल रहा था ना कि एक मेरा मित्र बता रहा था कि उसकी पत्नी ने कहा कि मैं अपने जीवन में केवल वर नहीं ढूंढ रही थी, मैं सुवर ढूंढ रही थी। और मेरी प्रार्थना भगवान ने पूरी करी। तो फिर ये भी ये कहता है कि हाँ कि वर या सुवर जो भी कहो, लेकिन जो वधू है उसमें भी एक शब्द छिपा हुआ है वध। तो मेरा भी शायद आगे कुछ ऐसा ही होने वाला है उसने कहा। तो ये लड़का अब लड़की से कहता है कि निकालो हार निकालो, और दोनों अपना अपना हार निकाले। अब पता लगा कि ये मंदिर कोई दूसरे मंदिरों जैसा नहीं कि दो घंटे बाद कोई आता है पीछे से। बहुत से मंदिरों में दो घंटे बाद घंटी बजती है फिर कोई दर्शन के लिए आता है, खाली रहता ना मंदिर। यहाँ पे तो देखिए कि सभी घूम रहे हैं माला झोली लेके, हरे कृष्ण और सभी देखते रहते हैं कौन नया आया लगता है, अपनी माला से ज्यादा दूसरों से ध्यान रहता है। और वो भी यदि कोई ऐसे आ जाए हार वार लेकर, तो लोग वो लड़की उससे कह रही लड़के से कि यहाँ पे तो सब देख रहे हैं। तो लड़का तो देख रहे हैं तो क्या अब शर्माना क्या। तो अच्छा है सबूत विटनेस भी होने चाहिए ना साक्षी। तो कैसे तो कर वो अब आमने सामने भी नहीं हो पा रहा है, तो कैसे तो हार को वो ढक रहे थे अपने में, और उसने हार को अपने एक हाथ में लिया और बिना देखे देख रहा कहाँ पर स्तर कहाँ पर कैसे तो डाल दिया, और ये थोड़ा लंबा था तो इसको तो और मुश्किल हो रही थी, तो इसने अपना हाथ ऊपर करने का प्रयास किया तो इसने लेकर खुद ही डाल दिया। और इस प्रकार से ये फिर भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने आप को अब नव विवाहित वर और वधू मान रहे थे। एक दूसरे दिन की बात है, हमारे मंदिर में रात्रि के समय जब शयन आरती हो जाती है तो बहुत से लोग आते हैं शयन आरती में, और उसके पश्चात 9:30 बजे तक लोग रहते हैं और फिर 9:45 बजे तक मंदिर खाली होता है। तो मैं 9:30 बजे की बात है, और मैं उस दिन थोड़ा थका हुआ था तो अपने चटाई वटाई लेकर मैं सीधा डाल दिया सोने के लिए। तो जैसे ही मैं मंदिर का दरवाजा बंद करने जा रहा था तो एक व्यक्ति भागते हुए आया, पूछता भगवान कहाँ है। तो उस समय हमारे मंदिर में एक आप लोग कुछ कई लोग मिले होंगे उनसे, हमारे मंदिर में वो रहते थे, अभी वो ताकेत की तरफ रहते हैं ब्रह्मचारी भगवान प्रभु। तो मुझे लगा कि शायद भगवान प्रभु ब्रह्मचारी जिनका नाम है उनके बारे में पूछ रहा, मैंने कहा कि वो दौंड में, उस समय वो दौंड में थे। उसने कहा दौंड में, दौंड कहाँ है। मैंने कहा दौंड पूना से आगे है, वहां से कुछ 6-7 घंटा लगता है वहां जाने। मैंने दौंड में क्यों भेज दिया, मैंने क्यों भेज दिया, उनकी इच्छा थी वो गए वहां से। तो कहे कि अच्छा चमत्कारी है क्या ये। मैंने कहा अरे भाई इसमें चमत्कार क्या, दौंड जाने की इच्छा हुई चले गए, इसमें चमत्कार क्या, कोई भी जा सकता है दौंड, तुमको जाना है तुम भी जाओ। अरे लेकिन मैं 2 महीना पहले आया था तब तो थे। तो मैंने कहा नहीं नहीं वो तो 4 साल से वहां पर है। मेरा अरे लेकिन 2 महीना पहले मैं आया था यहाँ पर तो थे वहां वो। मैंने कहा तो आए होंगे वहां से, वो तो आते जाते रहते हैं। अब मेरी गाड़ी दूसरी पटरी पर चल रही है, इसकी गाड़ी दूसरी पटरी पर चल रही है, हम दोनों अलग अलग अपनी अपनी दिशाओं में जा रहे हैं, वो आते जाते रहते हैं। अरे तो क्या वो यहाँ के हैं तो आते जाते रहे। हाँ यहाँ के हैं ना, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ के हैं तो फिर दौंड कैसे गए। अरे उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई क्या। तब मुझे लगा हाँ तो कुछ तो यहाँ दाल में काला लग रहा है। बोले किसको ढूंढ रहे हैं पहले बताओ। अरे आपके भगवान वो बांसुरी वाले कृष्ण भगवान। मैंने कहा वो तो ऑल्टर पे हैं, तो वो अभी उनका शयन हो गया होंगे, तो अभी वो शयन आरती हो गई, अब सुबह 5 बजे आना। मैंने कहा क्या हो गया इतनी इतनी उत्कंठा इतनी आतुरता। नहीं मुझे मिलना है। क्यों। 2 महीने पहले मैं आया था और मैंने मन्नत मांगी थी। क्या मन्नत मांगी थी क्या होता हूँ आपको। मैंने कहा अभी यहाँ तक बता दिया तो आगे भी बता दो। बताओ नाम बताओ पक्का। हाँ पक्का। उसने कहा कि 2 महीने पहले वो कॉलेज में एक नहीं मैं प्रेम करता था, ऐसा नहीं कि मैं फालतू लड़कों में से नहीं हूँ, प्रेम। तो मैंने मन्नत मांगी थी उसके लिए और पूरी हो गई। पूरी हो गई इसलिए मैं ये आपके भगवान चमत्कारी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो मन्नत पूरी कर दी। तो देखिए लोग और हम लोग सब पता नहीं ऐसे हम लोग कितने ऐसे हमारे जन्म में हम भागे होंगे अपने असली पति को छोड़कर यहाँ पति बनने। तो अक्सर लोग सोचते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों का अनुगमन इस तरीके से करेंगे इस भौतिक संसार में, परंतु आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से रुक्मिणी देवी और भगवान श्री कृष्ण इनका मिलन कितनी शिक्षाएं हमें दे रहा है कि हमें क्या क्या शिक्षाएं इनसे लेनी होगी। सबसे पहले तो हम एक थोड़ा सा आपका जनरल नॉलेज टेस्ट करेंगे। रुक्मिणी देवी कहां से थी? हाँ हाँ कौंडन्यपुर। और वो कहां पर है? विदर्भ में। तो रुक्मिणी देवी का एक और नाम था वैदर्भी। रुक्मिणी देवी का एक और नाम था वैदर्भी। और रुक्मिणी देवी के पिता का नाम क्या था? नहीं हाँ भीष्मक। रुक्मिणी देवी के पिता का नाम था भीष्मक। रुक्मिणी देवी के भाई का नाम रुक्मी। और रुक्मिणी देवी का विवाह किससे होने वाला था? शिशुपाल। हमारे एक बंबई के भक्त वो एक बार ब्रह्मचारी आश्रम में बैठकर जप कर रहे थे, तो उन्होंने ये देखा, एक छोटी सी छिपकली देखी दीवार पर, तो देखकर कहा शिशुपाल। तो मुझे समझ में नहीं आया, बोले क्या हो गया अचानक ये छिपकली को देख के शिशुपाल क्यों कह रहा? तो फिर मुझे किसी ने बताया कि छिपकली को मराठी में पाल बोलते हैं, और वो शिशु तो उसने कहा शिशुपाल। तो शिशुपाल वो अपना पूरा प्लान बनाए हुए था कि वो विवाह करेगा रुक्मिणी देवी से, और शिशुपाल से रुक्मिणी का विवाह कराने की सबसे ज्यादा इच्छा थी किसकी? रुक्मी भाई की। वो शिशुपाल को अपना जीजा बनाना चाहता था। परंतु भीष्मक जो रुक्मिणी देवी के पिता, भीष्मक इनकी इच्छा नहीं थी, परंतु भीष्मक उनकी भूमिका इस पूरे प्रसंग में इस प्रकार की है कि भीष्मक ये हालांकि राजा और पिता और वयस्क व्यक्ति, परंतु इनके अंदर इतना साहस धाड़स नहीं था कि वो रुक्मिणी देवी और रुक्मी के विरुद्ध जाकर रुक्मिणी देवी का विवाह कृष्ण से करें। तो इसमें हम देखेंगे कि जीव का भगवान के साथ जो मिलन है या प्रकृति का परम पुरुष पति से जो मिलन है उसमें रुक्मिणी की तुलना की गई है जीवात्मा से, हम सब से। रुक्मिणी देवी की तुलना हम सब से की गई है कि हम सब जो भगवान से जुड़ना चाहते हैं आप लोग, परंतु तलाक लेना पड़ेगा यहाँ पर है, यहाँ से तलाक लेना पड़ेगा और फिर वहाँ शादी होगी। ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी शादी चल रही है अपनी और वहाँ पर भी। यहाँ से तलाक लेने का अर्थ है इंद्रिय भोग से तलाक। हालांकि हम भगवान को तलाक देकर आए हैं, हम सब भगवान के साथ थे, परंतु हमने वहां पर भगवान को तलाक 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 3 बार बोलते हैं ना। तीन बार बोलने से हो जाता है वहां पर। तो तीन बार बोलने से यदि देखिए किसी धर्म में यदि तीन बार बोलने से किसी का संबंध टूट जाता है तो सोचिए यदि तीन बार हम बोले तो क्या संबंध जुड़ नहीं जाएगा। और क्या बोलना है हमें तीन बार? तो रुक्मिणी देवी इनकी तुलना एक जीवात्मा से यदि हम करें, एक साधक से यदि हम करें, तो भगवान श्री कृष्ण की तुलना करनी होगी पति या परम स्वामी जिनसे प्रकृति का विवाह होने जाने वाला है। तो वो है हमारे परम पति परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण। और भीष्मक राजा भीष्मक जो कि रुक्मिणी देवी के पिता, इनकी तुलना की गई है बुद्धि से। तो बुद्धि हमारी कहती है और इस मान्यता में है हमारी बुद्धि की इस जीव का विवाह इसके परम पति से होना चाहिए। परंतु इस भौतिक संसार में ये जो हमारी बुद्धि है इसे हमने पूरा चार्ज नहीं दिया, इसलिए रुक्मी की तुलना की गई है अनियंत्रित मन से। कि ये जो अनियंत्रित मन है हमारा, ये अनियंत्रित मन भगवान श्री कृष्ण को ठुकराकर बुद्धि को चुप कराकर, रुक्मिणी यही किया, राजा भीष्म को भी चुप करा दिया रुक्मिणी ने। तो ये अनियंत्रित मन ये जीवात्मा को और जीवात्मा की बुद्धि को पहले चुप कराकर जीवात्मा को भगवान श्री कृष्ण से अलग कर किससे विवाह कराना चाहता है? शिशुपाल। और शिशुपाल की तुलना है भौतिक इंद्रियों से। ये जो हमारी भौतिक इंद्रियां हैं, ये जो अनियंत्रित मन है, इसका केवल एक ही कार्य है इस भौतिक संसार में, और वो कार्य है कि कैसे बद्ध जीवात्मा को भौतिक इंद्रियों के साथ जोड़ता रहे। इसलिए श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में जब व्यासदेव जी वो इनसे शिक्षाएं ले रहे हैं नारद मुनि से, तो नारद मुनि व्यासदेव जी को शिक्षा देते हुए एक सुंदर श्लोक में कहते हैं, एतद्व्यातुर चित्ताणां मात्रा स्पर्शे छयामोह भवसिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्याणु वर्णनम। इस सुंदर श्लोक में नारद मुनि व्यासदेव जी को बता रहे हैं कि जीवात्मा अपनी बद्ध अवस्था में दृढ़ कैसे बनता है। एतद् हि आतुर चित्ताणां, किस बद्ध अवस्था में जीवात्मा का जो चित्त है वो आतुर है, और आतुरता कौन सी है? भगवान को पाने की नहीं, इंद्रिय भोग को पाने की जो आतुरता है। सोचिए कि इतनी आतुरता है बद्ध जीव की कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन सब के दुखों से घिरा हुआ आध्यात्मिक अधिदैविक अधिभौतिक क्लेश में घिरा हुआ जकड़ा हुआ वो फिर भी इंद्रिय भोग के पीछे भाग रहा है। हमारे शास्त्रों में एक उदाहरण दिया गया है, उदाहरण दिया गया है कि एक व्यक्ति वो जंगल में जाता है कुछ सुख शांति प्राप्त करने के लिए, कुछ इंद्रिय भोग प्राप्त करने के लिए। वो जंगल में जाता है कुछ लकड़ियां तोड़ने के लिए, जिसे लेकर वो अपना कोई व्यवसाय चालू कर सके, पैसा कमा सके। तो जब वो जंगल में प्रवेश करता है, तो जैसे ही जंगल में प्रवेश करता है तो जंगल बहुत सुहावना दिखता है। चिड़ियों की चहचहाट, हवाएं इतनी ठंडी शीतल हवाएं चलती हैं, और हर जगह पर हरा भरा, बहुत सुंदर दिखता है ना जंगल। परंतु जब जंगल में कोई प्रवेश करता है और जब सूर्यास्त होने लगता है तो वही जंगल डरावना दिखने लगता है। तो ये उदाहरण दिया गया है कि ये व्यक्ति उस जंगल में प्रवेश किया सुख शांति व्यवसाय और कुछ इंद्रिय भोग को ढूंढने के लिए, और उसने देखा कि वो काफी अंदर चला गया। इन सब को ढूंढते हुए वो काफी अंदर उसने प्रवेश कर लिया इस जंगल के, और वहां पर अब अंधेरा हो रहा है। तो उस अंधेरे में वो थोड़ा भयभीत होने लगा, और जैसे ही वो भयभीत होने लगा तो उसने क्या पाया, उसने देखा कि उसके पीछे एक बहुत ही खूंखार शेर उसके पीछे दौड़ रहा है, और न केवल वो शेर बल्कि उस शेर के साथ एक बहुत ही बड़ा विशाल हाथी। और ये हाथी ऐसा कि जिसके 12 पैर हैं। कल्पना कीजिए, एक हाथी जिसके 12 पैर हैं और जिसके 6 मुंह हैं, ऐसा हाथी भागने लगा। तो ये डर के मारे सोचिए, ऐसा हाथी यदि कोई पीछे भाग रहा है, कोई हाथी का बच्चा भी भागे तो हमारी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। तो सोचिए, कोई ऐसा हाथी जिसके 6 मुंह 12 पैर ये पीछे भागने लगे, तो ये अपनी जान बचाते हुए भाग रहा है, चिल्ला रहा है। और जैसे ही ये आगे की तरफ भाग रहा है कहीं पर कोई सहारा ढूंढते हुए, तो सामने से क्या देखता है, सामने से देखता है कि एक बहुत ही कुरूप सी दिखने वाली, भयानक सी दिखने वाली एक डाकिनी, एक डरावनी सी अकेली डाकिनी। सामने से जो कि उसके चेहरे पर झुर्रियां ही झुर्रियां, पूरा चेहरा बस झुर्रियों से घिरा हुआ, उसके केश एकदम दूध की तरह सफेद, कोई गुणगान नहीं है। तो उसके केश ऐसे, उसके पूरे चेहरे पर झुर्रियां, और उसका लंबा कद, और वो अपने बहुत ही भयानक से दांतों को दिखाते हुए जो कभी मांजे नहीं, ऐसे दांतों को दिखाते हुए करके वो भाग रही है सामने से इसके आप झपटने के लिए। तो इसने देखा, अब जाऊं कहां, पीछे ये हाथी आगे ये डाकिनी। तो फिर इसने लेफ्ट टर्न लिया, तो जैसे ही इसने एक मोड़ लिया मुड़ने के लिए, इसने देखा कि इसके सामने कुआं। तो यहां वहां देख रहा है कि अब जाऊं कहां, कुएं में कूद गया। जैसे ही कुएं में कूदा ये, तो इसे पता लगा कि कुएं में पानी नहीं है, कुएं में पानी नहीं है। और इतना गहरा ये कुआं कि ये चिल्ला रहा है और इसकी आवाज कहां तक पहुंच रही है कुछ पता नहीं, इतना गहरा ये कुआं। और ये गिर रहा है, गिर रहा है। और जब ये कुएं के मध्य भाग तक पहुंचा गिरते हुए, अब तक रास्ते में है, नीचे तक नहीं पहुंचा, मध्य भाग तक पहुंचा इस कुएं के, तो जान नहीं पा रहा कि कहां गिरने वाला है। तो अपने हाथ पैर मारने लगा यहां वहां कुछ सहारा ढूंढते हुए। तब उसे कुएं की दीवार से उगी हुई एक टहनी उसके हाथ लगी, तो उसने उस टहनी को पकड़ लिया। कई बार कुओं की दीवार से उगती है ना तो टहनियां, तो टहनी को उसने पकड़ लिया और अब उस टहनी पर वो लटका हुआ, उस टहनी पर एक हाथ पकड़े वो लटका हुआ है। और वो नीचे देखता है कि नीचे क्या है। तो जैसे ही नीचे उसने अपनी आंखें डाली, सर्प, वो कुआं जहरीले कोबरा इनसे भरा हुआ, और वो सभी ऊपर ऊपर अपना मुख कर सभी एक दूसरे को कहते हैं हरी वो। वो सभी सर्प सारे वो एक दूसरे को कहते हैं। तो आज हम हमारे रविवार के कार्यक्रम में इसका स्वागत करना चाहेंगे जो पहली बार आए हैं। तीन वो तीन बार हिस 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 कहकर तो वो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं नीचे। यहां पर ये लटका हुआ नीचे देखता है तो ये सारे सर्प, और ये अपनी जिह्वा निकालते हुए कहते हैं बोलो बोलो महाप्रसाद गोविंदे। और वो अपनी प्रार्थनाएं शुरू कर दिए महाप्रसादे। परंतु वो राधा कृष्ण गुण नहीं गा रहे थे, वो गा रहे थे हाथी शेर गुण गाओ जिनके वजह से ये गिरा है अंदर। तो ये लोग नीचे प्रतीक्षा कर रहे हैं और ये हाफता हुआ पसीना पसीना ये जब ऊपर दिखता है तो ऊपर वो हाथी वो ढूंढ रहा है कहां गया ये। और वो हाथी जिसके 6 मुंह 12 पैर, और इस अवस्था में वो अब नीचे देखे तो डर, ऊपर देखे तो भय, एक ही बात है। तो डर और भय इन दोनों से व्याकुल, एकमात्र सहारा जो उसकी टहनी, वो खुश होकर टहनी की तरफ देखता है। अरे कम से कम ये टहनी तो सहारा है। तो जैसे ही वो टहनी की तरफ देखता है तो उसकी आंखें क्या देखती हैं कि वो टहनी को दोनों तरफ से दो चूहे कुतर रहे हैं, एक काला एक सफेद। एक काला चूहा दाईं तरफ से, सफेद चूहा बाईं तरफ से, और वो जो टहनी की जो जड़ है उसको धीरे 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 कैसे कुतर रहे हैं। और ये महाशय देख रहे हैं कि लोग कुतर रहे हैं। सोचे क्या अवस्था होगी इसकी, इस अवस्था में वो जाए तो कहां जाए, करे तो क्या करे, पुकारे तो किसे पुकारे, चूहों को, सांप को, हाथी को, खुद को क्या करे वो। परंतु इस सब अवस्था में हुआ क्या, हुआ ये कि उस कुएं के बगल में एक पेड़ था और ये पेड़, इस पेड़ की एक टहनी कुएं के मुंह तक आ रही थी और इस टहनी के ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता। किसका? मधुमक्खी का छत्ता। तो ये मधुमक्खी का छत्ता अब ये देख रहा है कि ऊपर वो टहनी से ये मधुमक्खी का छत्ता लटक रहा है और वो जो हाथी, वो हाथी के फुफकार की वजह से वो सारी मधुमक्खियां उड़ने लगी और कहां जाने लगी, कुएं के अंदर। सोचिए, केवल इसकी कमी थी और वो मधुमक्खियां इस व्यक्ति के इर्द गिर्द मंडराने लगी। ऐसी आवाज निकलती ना मधुमक्खी, बहुत सुंदर लगती ना आवाज, डंक मारती है ना तब पता लगता है, साउंड के साथ साउंड इफेक्ट गिरती थी। इसलिए भगवान ने बहुत बुद्धिमानी से इन प्राणियों को बनाया। मच्छर, मच्छर होता ना, वो भी रात्रि में आपने देखा होगा, नहीं सुना होगा, कान में पहले आके बोलता ना घूम, है ना। तो भगवान ने इन मच्छरों को, मधुमक्खियों को इस प्रकार से बनाया कि ये पहले वार्निंग देते हैं हम आ गए, काटने से पहले ये कान में आके बोलते हैं हम आ गए काटने के लिए, जो करना है करो। नहीं तो देखो, हर एक मच्छर पहले कान में आके सूचना देता है मैं आ गया और फिर जाके अपना काम शुरू करता है। तो ये मधुमक्खियां, ये सारी मधुमक्खियां अंदर जाकर इसके चारों तरफ इसकी प्रदक्षिणा लगा रही है। तो इसे लगता है वाह, अरे कोई तो जीवन में मेरी प्रदक्षिणा कर रहा है। परंतु ये मधुमक्खियां केवल प्रदक्षिणा नहीं कर रही थी, जैसे हम तुलसी महारानी को प्रदक्षिणा कर कर फिर जल देते हैं, तो ये मधुमक्खियां प्रदक्षिणा कर कर फिर मधु नहीं देने लगी, अपना डंक मारने लगी। इस अवस्था में नीचे कौन? सरप। क्या कर रहे हैं? ऊपर हाथी और वो प्रतीक्षा में है अपने सारे छह मुंह और 12 पैर को लेकर। और ये मधुमक्खियां, और भूलना मत, और कौन है? दो चूहे, वो अपने काम में लगे हैं, एक सफेद एक काला। और इस अवस्था में ये हताश हुआ ये मनुष्य, ये जब भूखा प्यासा ऊपर देखता है तो उस मधुमक्खी के छत्ते से हर 2 मिनट बाद मधु, शहद का एक बूंद टपकता है। और उसका पोजीशन इस व्यक्ति का ऐसा था कि वो जो शहद सीधा इसके जिह्वा के ऊपर लैंड कर रहा था, एकदम बराबर एम था, सीधा इसके जिह्वा पर। मतलब कि कोई बोलते ना, लोग कहते ना, ये ओरिजिनल शहद, कई बार वो छत्ते को लेकर आते हैं निचोड़ कर उसमें से देने के लिए, बांटते ना, तो इसे एकदम ओरिजिनल शहद मिल रहा था बिना किसी को टच किए। उसमें भी वो आदमी का हाथ लग जाता, यहाँ पे तो किसी का हाथ भी नहीं लगा, सीधा उस छत्ते से इसकी जिह्वा पर। और उस छत्ते से इसकी जीवा पर जब वो शहद गिरा तो ये कहता है वाह वाह, इससे ज्यादा आनंद की अनुभूति मुझे आज तक कहीं नहीं। उस समय उस कुएं की दूसरी तरफ से एक मनुष्य, दूसरा मनुष्य इसकी स्थिति को देखता है और रस्सी फेंकता है कि इस रस्सी को पकड़ो और मैं तुम्हें ऊपर खींचकर तुम्हें बचा लूंगा। परंतु ये व्यक्ति कहता है यदि मैं तुम्हारी रस्सी पकड़ूंगा तो मेरा पोजीशन हिल जाएगा। तो उसने कहा अरे तुम्हारा पोजीशन तो अभी हिलने वाला है, वो देखो वो दोनों काट रहे हैं और नीचे क्या है ऊपर क्या है इर्द गिर्द कौन मंडरा रहा है, तुम्हारा पोजीशन तो अभी सब टूटने वाला है, कौन से पोजीशन की बात कर रहे हो। उसने कहा नहीं, मेरा पोजीशन इतना पक्का जमाया हुआ है, भगवान की योजना है। पोजीशन ऐसा है कि उस छत्ते से हर 2 मिनट बाद शहद का एक बूंद सीधा मेरी जीवा पर आ रहा है। अरे इससे अच्छा सौभाग्य, इससे अच्छा अरेंजमेंट और क्या हो सकता है। तो उस व्यक्ति ने, इस मनुष्य ने इस अपनी दुखद स्थिति में उस रस्सी फेंकने वाले मनुष्य को दुर्लक्ष कर वो रस्सी नहीं पकड़ी। क्या कहेगा आप इस मनुष्य को, इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई है? इसने अपनी उस अवस्था में जब इसे कोई सहायता की रस्सी फेंक रहा है, परंतु ये किस चिंता में है कि वो शहद की बूंद वो नहीं मिल पाएगी। तो हमारी अवस्था भी उस मनुष्य के समान है कि हम भौतिक संसार के जंगल में आए सुख ढूंढने के लिए, इंद्रिय भोग ढूंढने के लिए हम इस भौतिक संसार के जंगल में भटक रहे हैं, जन जन्मांतर से भटक रहे हैं, खोज रहे हैं कहीं मुझे कोई सुख शांति मिल जाए। और दूर से जैसे जंगल बहुत सुहावना दिखता है, वैसे दूर से हमें ये भौतिक संसार बहुत अच्छा दिखा, और जब हमने प्रवेश किया तब हमें पता लगा कि हमारे पीछे ये हाथी और वो शेर लगा। तो वो हाथी जिसके 6 मुंह 12 पैर, उसकी तुलना की गई है साल के 12 महीने और 6 ऋतुओं से, कि जो हमारे पीछे लगे हुए हैं। और जब हम आगे भाग रहे थे अपने आप को उनसे बचाने के लिए, उस समय से बचाने के लिए, तो सामने से कौन आई, वो डाकिनी जो कि झुर्रियों से युक्त, जिसके बाल एकदम सूखे हुए सफेद और जिसके दांत एकदम डरावने, चिल्लाती हुई वो डाकिनी उसकी तुलना की गई है वृद्धावस्था से। तो सामने से वृद्धावस्था हमारी तरफ भाग रही है, पीछे से समय हमारे पीछे भाग रहा है, और जब हमने अपने आप को बचाने के लिए सहारा किसका ढूंढा, कुएं का। इस कुएं का सहारा ढूंढा कि हमने सोचा कि इस भौतिक संसार में यदि मैं किसी और योनि में चला जाऊं तो शायद उस योनि में मुझे सुख मिल जाएगा, परंतु पता लगा कि वो दूसरी योनि उस अंधे कुएं के समान जिसके नीचे वो सर्प वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस मनुष्य की जब वो नीचे गिरेगा और वो है मृत्यु। वो सर्प की तुलना मृत्यु से की गई है, और हम हमारे शरीर के सहारे वो टहनी, उसकी तुलना हमारे शरीर से की गई है, उसके सहारे हम अपने आप को बचाए हुए कितने समय तक, जब तक कि वो चूहे उस टहनी को कुतर न दे। और वो दो चूहे, एक सफेद एक काला,
इनकी तुलना की गई है दिन और रात से, कि दिन और रात हमारे इस शरीर को कुतर कुतर कर यही एक सहारा जो हमारा है इसे खत्म कर रहे हैं, इसे क्षीण कर रहे हैं। क्षण भंगुर देही नाम, ये देह जो हमारा है वो जीर्ण हो रहा है, खत्म हो रहा है। और इस अवस्था में हमने सोचा कि हम ऊपर कुछ सहायता के लिए अपना मुख ऊपर किए तो हमने देखा कि वो मधुमक्खी का छत्ता और सभी मधुमक्खियां मंडराते हुए, वो मधुमक्खी की तुलना की गई है छोटे मोटे जो तकलीफें हमें होती रहती हैं इस पूरे संसार में, जो अलग अलग प्रकार की छोटी बड़ी तकलीफें वो हमें डंक मार रही हैं हमारी इस अवस्था में, परंतु इन सब के मध्य में वो दो बूंद शहद की दो मिनट बाद जो हमारे जिह्वा पर गिरती है उसकी तुलना की गई है इंद्रिय भोग का सुख, कि इन सब से हम घिरे हुए परंतु वो जो शहद रूपी इंद्रिय भोग हमें जब दो बूंद का दो मिनट बाद अपनी जिह्वा पर जब मिलता है तो हमें लगता है वाह क्या आनंद। और इतना ही नहीं, पूरी अवस्था में जब कोई श्रील प्रभुपाद जैसा व्यक्ति आकर रस्सी फेंकता है और वो कहते हैं कि ये रस्सी को पकड़ो और बाहर निकलो, परंतु हम क्या बोलते हैं कि मेरा पोजीशन हिल जाएगा, शहद खाने का जो मेरा ये पोजीशन है वो शहद नहीं मिल पाएगा। इसलिए महाराज कुलशेखर अपनी प्रार्थना में वो भगवान श्री नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं, अंधस्य मीरित विवेक महाधनस्य चौरैर महाबलिभिरिन्द्रिय नाम ध्येय मोहांधकूप विनिपातितस्य लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलंबम। वो गा रहे हैं कि मेरी अवस्था ऐसी है हे भगवान कि मुझे सबसे पहले तो किसी चोर ने लूट लिया, और लूटा कैसे है, सबसे पहले मेरी आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली अंधस्य, मेरे को अंधा बनाया पहले, न केवल अंधा बनाया बल्कि मेरी विवेक बुद्धि छीन ली। मेरी विवेक बुद्धि छीनने के पश्चात मैं चिल्ला भी नहीं पा रहा हूं कि ये शत्रु हैं, कुछ लुटेरे हैं, लूटने आए हैं, परंतु ये कोई साधारण से लुटेरे नहीं, महाबली भी बहुत बलशाली हैं ये लुटेरे। और ये क्या लूट रहे हैं, महाधनस्य, ये लूट रहे हैं कृष्ण प्रेम, जो मेरा महाधन है इसे ये लूट रहे हैं। तो पूछा जाए कि आगे इन लुटेरों ने किया क्या, न केवल मुझे अंधा बनाया, न केवल मेरी विवेक बुद्धि छीनी, बल्कि ये सब करने के बावजूद मेरा महाधन लेने के पश्चात मोहांध कूप कुहरे विनिपातितस्य, मुझे इस अंधे कुएं में ढकेल दिया है इन चोरों ने। अरे चोरी की ठीक है, अंधा बनाया ठीक है, कुएं में क्यों ढकेला बाद में, कुएं में ढकेल दिया तो वो भौतिक संसार, और ये चोर है कौन, इंद्रिय नाम ध्येय, मेरी ही इंद्रियां। इसलिए हे लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलंब, आप अपने कर कमलों से मुझे केवल उठाइए इस मोहांध कूप से। तो हमारी तुलना भी इस दुर्भागी मनुष्य के समान है कि जो इस भयंकर अवस्था में अटका हुआ वो दो बूंद की इंद्रिय भोग के पीछे उस रस्सी को त्याग रहा है। तो यहां पर रुक्मिणी देवी वो चाहती हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण से ही विवाह करें, परंतु अड़चने कितनी हैं। अड़चने हैं कि रुक्मी जो कि अनियंत्रित मन है, वो रुक्मिणी की शादी विवाह कराना चाहता है शिशुपाल से, तो बद्ध जीवात्मा के बीच में अड़चने हैं और एक सहारा केवल रुक्मिणी का और वो भीष्मक। भीष्मक सहारा, परंतु बुद्धि जो है, भीष्मक जो है, उनके अंदर वो शक्ति नहीं जिसके द्वारा वो रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से करा सके। तो ये अवस्था, परंतु रुक्मिणी का विवाह फिर भी भगवान श्री कृष्ण से हुआ। कैसे? रुक्मिणी कृष्ण मिलन की प्रक्रिया क्या थी, और ये प्रक्रिया से हम जानेंगे कि यदि हमें भी भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह करना है तो हमें रुक्मिणी देवी के पद चिन्हों पर चलते हुए इस क्रम को अपनाना है, इस प्रक्रिया को अपनाना है। तो सबसे पहले रुक्मिणी देवी ने किया क्या? ज्ञान अर्जित किया। किसका ज्ञान अर्जित किया रुक्मिणी देवी ने? रुक्मिणी देवी ने ज्ञान अर्जित किया दो वस्तुओं का। रुक्मिणी देवी ने सबसे पहले ज्ञान अर्जित किया कि रुक्मी मेरी शादी किससे कराना चाहता है। तो बद्ध जीवात्मा को सबसे पहले ज्ञान अर्जित किसका करना है कि ये जो मेरा अनियंत्रित मन है, रुक्मी रूपी मेरा अनियंत्रित मन है, ये अनियंत्रित मन मेरा विवाह किससे कराना चाहता है, किससे कराना चाहता है? इंद्रियों से, भौतिक इंद्रियों से कराना चाहता है। तो इसका ज्ञान, ये भौतिक ज्ञान भी होना आवश्यक है। यदि हमें यहां से छूटकर कृष्ण के द्वारा हरित होना है तो, और इसके साथ साथ रुक्मिणी देवी ने ज्ञान लिया किसका? भगवान श्री कृष्ण। ये आपको जानना होगा कि अब तक रुक्मिणी देवी भगवान श्री कृष्ण को देखी तक नहीं है। ऐसा नहीं कि रुक्मिणी देवी भगवान श्री कृष्ण को बहुत बार मिली थी और देखने के पश्चात, मिलने के पश्चात रुक्मिणी देवी के अंदर ये उत्कंठा हुई कि उनका विवाह उनसे होना चाहिए। एक बार भी रुक्मिणी देवी ने भगवान को देखा नहीं और कोई फोटो भी नहीं देखा। ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर में पढ़ लिया कि क्या क्या द्वारका में उन्होंने लीला की और द्वारकाधीश की फोटो, नहीं, फोटो भी उनका नहीं देखा। तो रुक्मिणी देवी के अंदर भगवान श्री कृष्ण को मिलने की इतनी तीव्र इच्छा जागृत हुई कहां से? श्रवण। भीष्मक, राजा भीष्मक के राज्य में जो भी बड़े बड़े ब्राह्मण ऋषि मुनि आते, वो आकर केवल भगवान श्री कृष्ण की ही लीला सुनाते। किसे? भीष्मक देव को। और रुक्मिणी देवी छिप कर सुनती कृष्ण लीला। कैसे सुनती? छिप कर। क्या हमारे अंदर इतनी उत्कंठा है कि हम कृष्ण की लीला छिप कर सुने? अरे सामने बैठकर सुनना भी मुश्किल होता है। और कई बार छिपकर सुनना तो दूर की बात है, हम नहीं सुनने के लिए छिपकर बैठते हैं। कि जैसे ही प्रवचन का अंतिम प्रसंग या भाग कुछ शुरू हुआ, एक भक्त बता रहे थे कि आप जब प्रवचन में वो हरे कृष्ण महामंत्र का गुणगान शुरू करते हैं ना, मुझे सबसे अच्छा लगता है। मैंने कहा अच्छा, इतना प्रेम है आपको? नहीं वो तो मुझे पता नहीं प्रेम है कि नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि जब भी आपके प्रवचनों में आप हरे कृष्ण महामंत्र का गुणगान शुरू करते हैं तो मुझे समझ जाता है लेक्चर खत्म होने वाला है। क्योंकि इनके हर प्रवचन में अंत में हरे कृष्ण महामंत्र का गुणगान होता है, तो हरे नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व प्रवचन में खत्म नहीं कर रहा हूँ। आप लोग में से कई सोच रहे होंगे आज प्रभु जी सुबह से लगे हुए हैं तो आज थक्के जल्दी खत्म करेंगे। नहीं, तो आप लोग आगे आगे आके बैठे होंगे आज जल्दी खत्म होगा जल्दी प्रसाद मिलेगा। और वो बताते हैं कि कीर्तन में भी जब प्रभुपाद का धुन शुरू होता है तो जोर से सब लोग हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो मैं भी सोच रहा था कि जब भी हम कीर्तन करते हैं और कीर्तन में जब बाकी ट्यून गाते हैं तो सब लोग इतना ज्यादा जोर जोर से हरि बोल बीच बीच में नहीं बोलते, जैसे ही प्रभुपाद धुन शुरू होती है तब जो जोर से हरी हरी बोल। आश्चर्य होता था कि ये इतना प्रेम है प्रभुपाद। तो फिर एक भक्त हमको आके बोले कि प्रभुपाद बहुत कृपालु है, परम कृपालु प्रभुपाद, उनकी धुन भी इतनी कृपालु कि वो धुन के बाद फिर खत्म होने वाला होता वो कीर्तन। तो रुक्मिणी देवी छिप छिप कर कृष्ण लीला सुना करती थी इन ऋषि मुनियों के मुख से, और केवल श्रवण करने मात्र से रुक्मिणी देवी के अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतनी तीव्र आसक्ति जागृत हुई केवल श्रवण करने मात्र से। तो ये दो प्रकार का ज्ञान रुक्मिणी देवी ने लिया, छिप कर ज्ञान एक क्या लिया कि रुक्मी मेरा विवाह किससे कराना चाहता है कब, और दूसरा ज्ञान छिप कर क्या लिया कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ हैं, क्या उनकी लीलाएं चल रही हैं, क्या उनके गुण हैं, ये दोनों ज्ञान। तो यदि हमें भी भगवान श्री कृष्ण से अपना संबंध स्थापित करना है तो ये दोनों ज्ञान हमारे अंदर भी होने चाहिए। एक तो ये माया देवी हमें कहां ले जा रही हैं, रुक्मी या अनियंत्रित मन, और भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान, इन दोनों को आत्मज्ञान कहते हैं। तो ये सबसे पहला क्रम होना चाहिए जब हमें अपने आप का संबंध भगवान से स्थापित करना है। तो तत्पश्चात रुक्मिणी देवी ने इसके आगे क्या किया भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, तीव्र उत्कंठा। रुक्मिणी देवी ने ऐसी तीव्र उत्कंठा दिखाई, ऐसा नहीं कि श्रवण कर लिया और ऋषि मुनि उनको कह दिया अच्छा लीला सुनाते हैं हरे कृष्ण, श्रवण करने के बाद रुक्मिणी देवी के अंदर तीव्र उत्कंठा रहती थी क्या कब और कोई ऋषि मुनि आएंगे और कृष्ण लीला सुनाने के लिए। तो हम जब भगवान श्री कृष्ण की लीला सुनते हैं तो हमारे अंदर ऐसी तीव्र उत्कंठा होनी चाहिए कि कब अगला रविवार का कार्यक्रम आएगा, ये रविवार के बीच में इतने सारे दिन क्यों है, फिर कृष्ण लीला होगी। रुक्मिणी देवी रोज बात देखती रहती कि कब कोई ऋषि मुनि आए और भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनाए। तो हमें भी इस प्रतीक्षा में रहना चाहिए कि कब फिर रविवार का कार्यक्रम होगा। हम में से कहीं रहते हैं प्रतीक्षा में, कब रविवार का कार्यक्रम होगा
और घर के रसोई घर को छुट्टी होगी। वो भी अच्छी उत्कंठा है, परंतु यहाँ पर ये उत्कंठा, ये दूसरा क्रम उस प्रक्रिया का, यदि हमें भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है। उत्कंठा का अर्थ उस दिन हमने बताया था, ये कंठ को जब ऊपर कर जब प्रतीक्षा करता है कोई किसी का, उत्कंठ, इस कंठ को ऊपर कर, है ना? जब हम बस ट्रेन या किसी और की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं तो ये कंठ ऊपर होता रहता है ना, और ऊपर, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाता, उत्कंठ होते हैं। तो यहां पर रुक्मिणी देवी उत्कंठित प्रतीक्षा में, इतना ही नहीं, रुक्मिणी देवी ने अपनी उत्कंठा को अपने कार्यों में लगाया। रुक्मिणी देवी ने एक ब्राह्मण की सहायता ली, एक भगवान के शुद्ध भक्त ब्राह्मण की शरण लेकर रुक्मिणी देवी ने किया क्या? प्रेम पत्र लिखा, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर भगवान श्री कृष्ण की तरफ, क्या कहते हैं उसे, लव लेटर। हमारे जब हम वायुसेना में थे तो वहां पर जब किसी को दंडित किया जाता था तो उसे वो नोटिस दिया जाता था, पुलिस स्टेशन से नोटिस आता था कि तुम्हें इस गुनाह के वजह से तुम्हारा चार्जशीट बनाया गया है। तो जब आता था तो सब लोग कहते थे अरे लव लेटर आ गया। तो रुक्मिणी देवी ने इस ब्राह्मण को वो पत्र लिखा, और वो पत्र में क्या लिखा उसकी चर्चा हम किसी एक रविवार को करेंगे। वो अपने आप में ही एक कृष्ण लीला है कि उस पत्र में रुक्मिणी देवी ने क्या क्या लिखा। तो वो पत्र रुक्मिणी देवी ने उस ब्राह्मण के हाथ में दिया और उस ब्राह्मण को कहा कि ये जाकर ठीक ठीक हमारे स्वामी द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के समक्ष जाकर देंगे। तो यदि जीवात्मा को भगवान से संबंध स्थापित करना है तो तीसरा क्रम क्या होना चाहिए, किसी शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करना। कि जब किसी शुद्ध भक्त की हम शरण ग्रहण करेंगे और जब शुद्ध भक्त हमारा प्रस्ताव भगवान के सामने प्रस्तुत करेगा तब भगवान उस प्रस्ताव को पार करेंगे, पास करेंगे। इसीलिए सरकारी डिपार्टमेंट में भी होता है ना कि कोई जान पहचान का है, कोई अंदर वाला आदमी, जैक बोलते ना उसे, अरे थोड़ा जैक लगाओ। तो ये सब आया कहां से, यहां से। तो रुक्मिणी देवी ने जैक लगाया, ये ब्राह्मण को ये प्रेम पत्र दिया और उनके द्वारा भगवान तक ये पहुंचा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है यदि हमें भगवान से संबंध स्थापित करना है कि किसी शुद्ध भक्त के द्वारा। इसलिए श्रील प्रभुपाद ये कहा करते थे कि यदि तुम शत प्रतिशत भी भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त नहीं बन सकोगे तो चिंता मत करना, मेरी धोती पकड़ लो। प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और उन्होंने कहा कि भगवान के धाम जाना है तो शत प्रतिशत शुद्ध होना होगा। सभी एक दूसरे को देखने लगे, शत प्रतिशत, 100%, पता नहीं यहाँ पे 1% भी कुछ हो रहा है कि नहीं। तो वो मायूस होकर प्रभुपाद की तरफ देखने लगे। प्रभुपाद ने कहा, क्या हुआ, तुम ऐसा बैंगन जैसा चेहरा क्यों बना लिए सब लोग? उन्होंने कहा, प्रभुपाद 100% शुद्ध। प्रभुपाद ने कहा, ठीक है 80%, 80 वो भी ज्यादा है थोड़ा, 80 भी नहीं, प्रभुपाद ने कहा ठीक है 75% तो शुद्ध हो जाओ। वो भी प्रभुपाद मुश्किल ही लग रहा है। प्रभुपाद ने कहा अरे चिंता मत करो, तुम मेरी धोती पकड़ लेना, मेरे पास गोलोक वृंदावन की पिछवाड़ी की चाबी है। परंतु वो प्रभुपाद की धोती पकड़ने का अर्थ क्या है कि जो प्रभुपाद ने नियम निर्धारित किए हैं उन नियमों को कष्टा पकड़कर रखना। प्रभुपाद ने कहा धोती छोड़ी तो नीचे गिरे, मैं नहीं जाऊंगा, मैं उठा लूंगा, मैंने धोती भी बहुत टाइट बांध दी। प्रभुपाद ने कहा मैं उठाकर ले जाऊंगा परंतु धोती नहीं छोड़ना। तो प्रभुपाद की धोती पकड़ने का अर्थ है कि जो नियम निर्धारित किए हैं, क्या नियम है, चार नियमों का पालन करना और उसके साथ साथ 16 माला जप। किसका? इसे कहते हैं धोती पकड़कर रखना। इसलिए यदि प्रभुपाद गोलोक वृंदावन की तरफ उड़ रहे हैं और हम भी प्रभुपाद की ही रफ्तार में उड़ रहे हैं धोती को पकड़ने की वजह से, परंतु यदि धोती पकड़ते पकड़ते डुलकी मार दे हम, सोचिए हवा में धोती पकड़े हैं और नींद आ रही है धोती पकड़ते समय, तो क्या होगा, बहुत जोर से गिरेंगे नीचे। तो धोती पकड़ने का अर्थ है नियमों को पकड़कर रखना। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा, और प्रभुपाद तो इतने नम्र, हर बार जब हम ये पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद ने चौथे स्कंद में जो लिखा है ध्रुव महाराज के प्रसंग में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब ध्रुव महाराज मृत्यु के ऊपर अपना पैर रखकर वैकुंठ विमान पर चढ़ रहे थे। सोचिए ध्रुव महाराज को वैकुंठ विमान पर चढ़ने के लिए सीढ़ी कौन बना, मृत्यु मूर्तिमान। तो ध्रुव महाराज मूर्तिमान मृत्यु के ऊपर अपना पैर रखकर वैकुंठ विमान पर चढ़ रहे हैं, तब ध्रुव महाराज ने पूछा वैकुंठ वासियों को, मुझे एक व्यक्ति के विषय में जानना है और वो है मेरी माता सुनीति, क्योंकि मेरी माता सुनीति ने ही मुझे वो पथ प्रदर्शक गुरु बनी थी मेरी, तो उन्हें भी मैं ले जाना चाहूंगा अपने साथ। तो वैकुंठ वासियों ने क्या कहा, ऊपर देखो, तुम्हारे विमान से पहले तुम्हारी माता सुनीति का विमान पहुंच रहा है, देखो वो रास्ते में है भगवत धाम के। तो श्रील प्रभुपाद ध्यान से सुनिए, हम सब का हृदय भर आएगा। श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जिस प्रकार से ध्रुव महाराज की भक्ति के वजह से सुनीति भगवत धाम चली गई, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जो हमने प्रयास किया है भगवत भक्ति को सारे विश्व में करने का, यदि कोई एक शुद्ध भक्त बन गया होगा अब तक और यदि वो भगवत धाम जा रहा होगा तो हो सकता है कि वो व्यक्ति हमारे संपर्क में जो भगवत धाम जा रहा है उस व्यक्ति की भक्ति की वजह से शायद मैं भी एक दिन भगवत धाम जाऊंगा। ये श्रील प्रभुपाद की नम्रता। अरे जिनके वजह से हम जैसे कितने सारे जगाई मधाई पाप के कीचड़ से निकाले गए, हमें कीचड़ से निकालकर हमें शुद्ध अमृत के सरोवर में डुबाया उन्होंने। और वो कहते हैं कि यदि कोई इनमें से शुद्ध भक्त बन गया होगा तो मुझे भी ले जाएगा। इसे कहते हैं शुद्ध भक्त। तो यदि हम ऐसे शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करेंगे श्रील प्रभुपाद जैसे, तो हमारी भी कोई आशा है कि हमारा भी लिखा हुआ प्रेम पत्र वो भगवान के चरण कमलों तक पहुंचेगा एक दिन। इसलिए भक्ति तीर्थ महाराज, जब भक्ति तीर्थ महाराज वो अपना शरीर छोड़ रहे थे तो हम हर रविवार को जाकर गीता नगरी में उनका कार्यक्रम अटेंड किया करते थे अमेरिका में। तो अपने एक कुछ उनके अंतिम रविवार कार्यक्रमों में से उन्होंने अपने एक प्रवचन में कहा कि भक्त रो रहे थे कि आप हमें छोड़कर जा रहे हो गुरुदेव। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जो अब तक कर रहा था वही मैं कर रहा हूं और वही मैं करते आऊंगा, मैं तुम लोगों की सेवा में लगा था। तो भक्ति तीर्थ महाराज कहते हैं कि मैं हर समय तुम भक्तों की सेवा में लगा था और अब भी मैं तुम्हारी भी सेवा में लगा हूं कि मैं यदि भगवत धाम चला गया तो वहां जाकर मैं तुम्हारे आने का अरेंजमेंट करूंगा। उन्होंने कहा अपने प्रवचन में, मैं खाली एक एडवांस पार्टी के रूप में जा रहा हूं। जैसे यात्रा में जब हम जाते हैं तो एक एडवांस पार्टी जाकर रूम बुकिंग करता है ना, तो उन्होंने कहा कि मैं एडवांस पार्टी में जा रहा हूं और जाकर गोलोक वृंदावन में तुम सब इस्कॉन डिवोटीज का रूम बुकिंग करूंगा वहां पर। हमें केवल अपना नाम यात्रा से कैंसिल नहीं करना है। तो ये इन महान भक्तों की नम्रता। तो इसलिए जब हम रुक्मिणी देवी ने जैसे उस ब्राह्मण की शरण ग्रहण की और उस पूरे रुक्मिणी हरण में वो जो ब्राह्मण जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम बने, इतनी चर्चा उनके बारे में नहीं होती। कौन सा मंदिर है उन पर खुला हुआ? कोई मंदिर है उस ब्राह्मण का खुला हुआ कि उस ब्राह्मण की पूजा हो रही है? तो एक शुद्ध भक्त इसी समान होते हैं कि वो अपना गुणगान नहीं चाहते। एक प्रचारक उसी के समान होता है कि ये ब्राह्मण के समान जो जीव को भगवान से मिला दे और उसके पश्चात फिर वो और जीवों के पीछे लग जाए उन्हें भगवान से मिलाने के लिए। इसे कहते हैं एक शुद्ध प्रचारक, जो अपना गुणगान नहीं चाहता, जो अपने नाम प्रतिष्ठा नहीं चाहता, बल्कि वो केवल जीव को कृष्ण से मिलाने के लिए उत्सुक रहता है। तो ये इस ब्राह्मण ने कार्य किया, नाम भी नहीं पता इनका। तो इनके माध्यम के वजह से वो पत्र पहुंच पाया और कृष्ण आ पाए। हालांकि कृष्ण अंतर्यामी है, क्या कृष्ण जानते नहीं कि रुक्मिणी किस अवस्था में है? क्या कृष्ण जानते नहीं कि रुक्मिणी प्रार्थना कर रही है अपने अंतकरण से? कृष्ण सब जानते थे। तो कृष्ण जानते हैं कि हम भी कौन सी बद्ध अवस्था में यहां पर हैं, परंतु कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब तक हम रुक्मिणी देवी की तरह किसी शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण नहीं करेंगे तब तक भगवान श्री कृष्ण अपने धाम से नहीं आएंगे हमें हरण करने के लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इन्होंने कहा, ना हम विप्रो न च नरपतिर ना पि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपतिर न मनस्तो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्दे गोपी भरतुर पद कमलयोर दास 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 अनुदास। कि मैं केवल दासों का दास बनना चाहता हूं।
और यही एकमात्र सहारा है चैतन्य महाप्रभु के, कि मैं उन गोपी भरतुर गोपीनाथ इनकी शरण ग्रहण कर पाऊंगा। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, यदि हमें भगवान श्री कृष्ण से अपना संबंध स्थापित करना है तो शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करनी। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करने का अर्थ है उनके आदेशों का पालन करना, और अंततः रुक्मिणी देवी इन्होंने ये साहस दिखाया अपने पारिवारिक आसक्तियों को तोड़ने का साहस, कि रुक्मिणी देवी हालांकि वो एक पूरी सुरक्षा में पली बड़ी एक सुशिक्षित कन्या, परंतु रुक्मिणी देवी ने अपने सारे पारिवारिक आसक्तियों को तोड़ने का साहस दिखाया जब उस दिन जब शिशुपाल का विवाह रुक्मिणी से होने वाला है, रुक्मिणी उस दिन सुबह गई माता दुर्गा के मंदिर। माता दुर्गा के मंदिर वो जाती हैं और माता दुर्गा से क्या प्रार्थना कर रही है रुक्मिणी देवी, कि हे माते, यदि आप मुझे अपनी कृपा दोगी तो मैं आपके जो स्वामी हैं उनकी सेविका बन सकूंगी। तो यहां पर रुक्मिणी देवी दिखा रही हैं कि यदि हमारी अवस्था भी ऐसे क्यों न हो जाए कि हमें रुक्मी जैसा अनियंत्रित मन शिशुपाल जैसी भौतिक इंद्रियों से उस दिन विवाह कराने के लिए आतुर है, तैयारियों में है, यदि हम उस दिन भी उस अवस्था में भी यदि हम दुर्गा देवी महामाया इनसे भी प्रार्थना करेंगे तो उनकी भी कृपा से हम भगवान से मिल सकते हैं, परंतु हमारे अंदर वो साहस होना चाहिए और वो विश्वास। रुक्मिणी देवी के अंदर वो विश्वास था कि वो पत्र यदि भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच गया है तो भगवान श्री कृष्ण अवश्य आएंगे मेरा हरण करने के लिए। और रुक्मिणी देवी जब वो दुर्गा के मंदिर से बाहर निकल रही थी तो वो सजी हुई थी, वो घिरे हुई थी अपने दासियों के साथ और पूरे साज सामग्री के साथ, परंतु रुक्मिणी देवी की नजर केवल ढूंढ रही थी भगवान श्री कृष्ण को। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को दूर से देख लिया रुक्मिणी देवी ने तो सारे बंधन तोड़कर रुक्मिणी देवी भगवान श्री कृष्ण की तरफ भागने लगी। और इन सब के माध्यम से ये सारे विदर्भ नगर के सारे रुक्मी शिशुपाल और सेवक और इन सब के मध्य से रुक्मिणी देवी भागने लगी भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने के लिए। तो ये साहस होना चाहिए, जब तक कि ये साहस हमारे अंदर नहीं, यदि हमारे अंदर अब तक भौतिक आसक्तियां बनी हुई हैं तब तक भगवान श्री कृष्ण का रथ नहीं दिखेगा। यदि भगवान श्री कृष्ण का रथ हमें दूर से भी देखना है तो हमें यहाँ से अपनी आसक्तियों को तोड़ना होगा। परंतु कई बार हम भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, पहले आप रथ दिखाओ फिर मैं छोड़ता हूँ। हमारी स्थिति है कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पहले रथ दिखाओ फिर मैं दिखाता हूं, परंतु भगवान कहते हैं इसका अर्थ है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, इसलिए यदि मैं आ भी जाऊं तो तुम मुझे देख नहीं पाओगे। तो यदि हम ये शर्त रखते हैं भगवान के सामने कि भगवान पहले रथ दिखाओ फिर मैं अपनी आसक्ति छोड़ूंगा, तो यदि भगवान आ भी जाए, हम यदि आसक्तियों को पकड़े हुए हैं तो भगवान को पहचान नहीं पाएंगे। इसीलिए
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसलिए भगवान ने कहा सभी धर्मों को जब तक नहीं त्यागोगे और जब तक मेरी शरण में नहीं आओगे तब तक सभी पापों से मुक्ति नहीं, तब तक अभयता प्रदान नहीं होगी हमें। मां शुचः भगवान कहते कि मैं उस व्यक्ति को निडर बना देता हूं। तो रुक्मिणी देवी निडर बन गई, सोचिए अकेली वो इतना निडर बन गई कि वो अकेली भागते हुए भगवान श्री कृष्ण के रथ की तरफ। और तब भगवान ने रुक्मिणी देवी को तुरंत स्वीकार किया और भगवान स्वयं रुक्मी और अन्य सैनिकों को उन्होंने परास्त किया। इसकी लंबी कथा है। परंतु जब भगवान द्वारका जा रहे थे रुक्मिणी देवी का हरण करते हुए, तो रुक्मिणी देवी भगवान ने किया क्या कि रुक्मिणी देवी को कहा कि तुम रथ चलाओ, तुम रथ चलाओ ताकि इन्हें यह न लगे कि मैं हरण कर ले जा रहा हूं, ताकि इन्हें यह न लगे कि मैं जबरदस्ती तुम्हें हत्या कर ले जा रहा हूं। और इसके पीछे गूढ़ कारण क्या है? इसके पीछे गूढ़ कारण यह है कि भगवान ये दिखा रहे थे कि यदि कोई भी मेरे शरण में भी आ जाता है तो मैं अपने रथ की डोरी उसके हाथ में देता हूं कि भगवत धाम भी तुम मुझे लेकर जाओ। भगवत धाम भी तुम मुझे लेकर जाओ क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि रास्ते में कहीं तुम भ्रमित होकर रथ से उतर तो नहीं जाते। तो भगवान इतने कृपालु हैं कि भगवान ये देख रहे हैं कि कहीं रास्ते में ये रथ से उतर कर कहीं भ्रमित तो नहीं हो जाएगा, इसलिए डोरी इसके हाथ में दे दो तो बिजी रहेगा रथ चलाने में जब तक कि ये पहुंचता नहीं अपने असली घर, अपने असली स्वामी के घर। तो ये है जीव का मिलन भगवान श्री कृष्ण से। रुक्मिणी देवी किस प्रकार से उन्होंने अपनी आतुरता, उत्कंठा, अपना ज्ञान और भक्तों की शरण और साहस, विश्वास, दृढ़ विश्वास, ये सब कुछ लेते हुए उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की। तो उसी प्रकार से हमें भी यदि भगवान श्री कृष्ण से अपना संबंध स्थापित करना है तो हमें सबसे पहले भगवान के विषय में ज्ञान अर्जित करना होगा। इस भौतिक संसार माया देवी रुक्मी शिशुपाल के विषय में भी ज्ञान अर्जित करना होगा ताकि उनसे बचे। उत्कंठा, शुद्ध भक्त की शरण और हमारी अंतिम आसक्तियों को तोड़ने का साहस, और ये जब सिद्ध होगा तब हमारा भी विवाह भगवान श्री कृष्ण से हो सकता है। और ये ऐसा विवाह है कि यदि हम एक बार वहां पर चले भी गए तो तलाक तलाक बोल भी दिया तो नहीं मिलने वाला अब। तो क्या हम ऐसा वैवाहिक जीवन को जीना नहीं चाहेंगे जहां पर कभी तलाक लिखा ही नहीं गया? हां कि नहीं? तो इसके लिए हमें पहले इस भौतिक संसार में जो हमने अपना विवाह कर लिया है इंद्रिय भोग से, उसे तलाक देना होगा। और इसे जब तलाक देंगे तब जाकर ये असली संबंध हमारा स्थापित हो पाएगा। और बहुत आसान है, जैसे कि हमने चर्चा की कि किसी धर्म में तीन बार जब कहते हैं तलाक 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 तो तलाक होता है ना, परंतु हम यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि हमें वो तलाक शब्द भी उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल यदि जो संबंध का शब्द है वो यदि उच्चारण करें तो अपने आप यहाँ से तलाक भी हो जाएगा और वहाँ विवाह भी हो जाएगा। और वो क्या करना है हमें जोर से,
शिक्षाष्टकम प्रभु की जय।
गौर भक्त वृंद की जय।
हरे कृष्णा। आज के अनाउंसमेंट किस प्रकार से है, आज का जो प्रसाद हम स्पॉन्सर किया है तो वो है भक्त वीनस वाणी प्रभु जी, उनकी माता जी शोभना वाणी, इनका आज जन्मदिन है तो उसके उपलक्ष्य में आज का प्रसाद उन्होंने स्पॉन्सर किया है। तो उनकी सभी भक्तों से विनती है कि उनके माताजी के लिए और उनके सारे परिवार के लिए भगवान श्री राधा गोपीनाथ जी, श्री गौर निताई जी और प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करें। तो हम उनका धन्यवाद करेंगे और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया करके व्यासाचार्य के पास आए दो मिनट के लिए, हम हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट उन्हें देना चाहते हैं। हम उनका धन्यवाद करेंगे तीन बार जोर से हरि बोल बोल के। और आने वाले रविवार के दिन, आने वाले रविवार के दिन हिज ग्रेस देव दर्शन प्रभु उनके फार्म में एक अंगूर पार्टी है, तो सभी भक्तों से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में उनके घर में उपस्थित रहे। अगर जिन भक्तों की इच्छा है वहां आने की तो यहां पे शर्मा प्रभु जी है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना नाम उनके पास देना है ताकि हमें समझ में आए कि कितने लोग भक्त आने वाले हैं, तो उनकी हम वहाँ पे व्यवस्था कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात है यहाँ पे कि हिज होलीनेस चंद्रमौली स्वामी महाराज नासिक में आ रहे हैं आने वाले शनिवार के दिन, और वो भी उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो जिन भक्तों को उनका संग लेना है, वैयक्तिक संग लेना है, तो कृपया करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहाँ पे उपस्थित रहे।
और चंद्रमौली महाराज अगले वाले रविवार के कार्यक्रम में यहाँ पर अपना रविवार का कार्यक्रम भी देंगे, और दूसरे दिन सोमवार के दिन वो सुबह का भागवत का प्रवचन भी देंगे, और फिर वो मंगलवार के दिन वापस मुंबई जा रहे हैं। और चंद्रमौली महाराज, जब मैंने उन्हें धन्यवाद दिया कि महाराज, वो स्वयं मुझे फोन करके बोले कि मैं आ रहा हूँ, मैंने उन्हें बुलाया भी नहीं, वो स्वयं बोले कि मैं आ रहा हूँ नासिक में, तो मैंने उनको धन्यवाद दिया कि महाराज बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सक रहा था कि आप जैसे महानुभावों का संग मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि मेरा धन्यवाद मुझे मत दो। उन्होंने कहा कि वो राधानाथ महाराज के पास गए पूछने के लिए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो राधानाथ महाराज ने चंद्रमौली महाराज को कहा, नासिक जाओ। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मैंने केवल एक यही प्रश्न पूछा और केवल इतना ही कहा उन्होंने कि सिर्फ नासिक जाओ, तो उनके आदेश पर मैं आ रहा हूँ। धन्यवाद देना है तो उनको दो। तो आ रहे हैं और रविवार का ये पिकनिक का कार्यक्रम इसमें वो रहेंगे और इसके पश्चात रविवार का कार्यक्रम शाम का भी वो देंगे, सोमवार का भागवत पाठ, और यदि हम चाहें तो सोमवार शाम को भी उनका कुछ कार्यक्रम हम आयोजित कर सकते हैं और फिर वो मंगलवार को सुबह निकलेंगे। हरे कृष्ण।
और सभी भक्तों के पास फीडबैक फॉर्म्स दिए गए हैं, तो हम काउंसलिंग सिस्टम चालू करने वाले हैं, तो उसकी भी जानकारी जो है आपको शर्मा प्रभु जी के पास मिलेगी। तो जिन जिन भक्तों ने फीडबैक फॉर्म्स लिए हैं तो कृपया करके वो भर के भक्त शर्मा प्रभु के पास देना है, ताकि हम सभी भक्तों के पास पर्सनली वैयक्तिक रूप से जाके मिल सकते हैं। जिन जिन भक्तों के कुछ प्रॉब्लम्स हो गए भक्ति में उन्नति के लिए, वो हम डिस्कस कर सकते हैं इस काउंसलिंग सिस्टम के द्वारा। तो कृपया करके सभी भक्तों ने फॉर्म भर के शर्मा प्रभु के पास देना है।
इसका मैं विशेष रूप से आप लोगों को ये सूचना देना चाहूंगा कि काउंसलिंग सिस्टम बम्बई में बहुत ही सफलता से चल रहा है। और ये काउंसलिंग सिस्टम है क्या कि जो हम पारिवारिक अपने जीवन में भगवान की भक्ति कैसे करें, कि नौकरी करते हुए, पेशा करते हुए, बच्चों को संभालते हुए भगवान की भक्ति में जो जो अड़चनें आती हैं, वो कैसे हम उनको झेलते हुए भगवान की भक्ति कैसे करें, तो इनके लिए हम व्यक्तिगत काउंसलर्स हमारे जो सीनियर गृहस्थ हैं उनको आयोजित नियोजित कर रहे हैं। और आप लोग सब यदि चाहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से आप अपनी भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं और पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप अपना मत दे सकते हैं। तत्पश्चात हम गौर पूर्णिमा से शुरू करेंगे।
आज का स्वीट प्रसादम जो स्पॉन्सर किया है वो है श्याम विलास जी लड्डा। तो उनकी कन्या सौ शीतल लोया जो इंदौर में रहती है, तो उनको एक कन्या रत्न हुई है, तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने आज का स्वीट प्रसादम स्पॉन्सर किया है। तो हम उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करेंगे 3 बार जोर से हरि बोल बोल के।
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
और जो भक्त इस कार्यक्रम के लिए पहली बार उपस्थित हुए हैं, तो मैं उनसे कृपया करके प्रार्थना करता हूँ कि 2 मिनट के लिए अपने जगह पे खड़े हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप आपका कीमती समय निकाल के यहाँ पे पधारे और आपका संग हमें दिया, हमारे कार्यक्रम की शोभा आपने बढ़ाई। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि इस कीर्तन के बाद पीछे इस ग्रेस गोविंदानंद प्रभु जी होंगे, तो उनसे आप जाके मिले ताकि वो हमारे जो रेगुलर वीकली हफ्ते में जो कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दे सके। तो हम इन सभी भक्तों का स्वागत और धन्यवाद करेंगे 3 बार जोर से हरि बोल बोल के। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बैठ सकते हैं। और हालांकि सभी भक्तों को पता है कि अपने यहाँ पे हमारे मंदिर में हर हफ्ते बुधवार के दिन भगवद गीता पे प्रवचन होता है हिंदी में, वो श्रीमान शिक्षा अर्चकम प्रभु लेते हैं। और ये जो भगवद गीता का प्रवचन है वो हर एक श्लोक के ऊपर भगवद गीता का प्रवचन होता है, तो अभी तक सिर्फ 2 जो है श्लोक हुए हैं। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित रहे इस कार्यक्रम के लिए। उसके बाद शुक्रवार के दिन उपदेशामृत पे इंग्लिश में लेक्चर होता है, उसमें भी आप लोग आ सकते हैं। जिस किसी को अगर बुधवार के दिन अगर पॉसिबल नहीं है तो आप शुक्रवार के दिन भी आ सकते हैं। और आज का रविवार का संडे फीस का प्रोग्राम, और उसके अलावा मंदिर के अलावा एक हमारा और एक प्रोग्राम होता है, वो सौजन्य बंगलो हमारे कलंत्री प्रभु जी के यहाँ, जिसका पता है कुलकर्णी गार्डन के सामने, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद कीर्तन होगा और उसके बाद प्रसादम। हरे कृष्ण।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदी।
महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतं राजन् विश्वासो नैव जायते शरीर अविद्याजाल जडेन्द्रियता हेका जीवे फले विशेषागरे तार मध्ये जीवाती लोभो माय सुदुर्मति ताकि देता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयामान करिवार जीव जाय स्वप्रसादन दिलो भाय सही अन्नामृत पाओ श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमिड़ा को श्री चैतन्य निता जय श्री श्री राधा गोपीनाथ श्री गौर निताय महाप्रसादम की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों से एक अनाउंसमेंट ऐसी है कि जो बद्रीनाथ यात्रा जाने वाली है श्री श्री राधा गोपीनाथ टेम्पल की ओर से, तो जिन किसी भक्तों को उस यात्रा के लिए जाना है तो कृपया करके हृदग्रेस नारायण ऋषि प्रभु के पास उन्होंने संपर्क करना है। हरे कृष्ण।